نستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله تعالى بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأذلافها فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور بھائیوں گزشتہ جمعہ اللہ جل شانہ کے کلام کی چند آیات اور ان کا ہم سے مطالبہ اس کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا انہی میں ایک آیت تھی انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم مال اور اولاد ایک آزمائش ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا بدلہ ہے بظاہر انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ مال اور اولاد ہمارے لیے ایک امتحان اور آزمائش کیسے ہے اور اس آزمائش سے ہمیں کامیاب کیسے باہر نکلنا ہے اللہ کا کرم ہے عید الاضحیٰ قریب ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس آیت کو واقعات کے تناظر میں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش کیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارے سامنے بہت تفصیل سے بتا کر یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، اولاد ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتی ہے، اور اس امتحان اور آزمائش سے تمہیں باہر نکلنا ہے، کامیاب نکلنا ہے، ناکام نہیں ہو جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت ساری آزمائشیں آئیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں آئیں، اور اللہ امتحان لینے والا، ممتحن، ایگزامنر، خود اعلان کا، رزلٹ کا اعلان، رزلٹ کا اعلان کرتا ہے، نتیجے کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ان تمام امتحانوں میں کامیاب نکلے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اولاد کا ایک امتحان بھی آیا تھا، بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد کے ملنے کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو، دونوں کو لے جا کر ایک سنگلاخ وادی میں، وادی غیر ذی ذرا میں لے جا کر چھوڑ دو، جہاں چاروں طرف کالے کالے پہاڑوں کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوان بیوی کو اور اس کے گود کے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی اس سنگلاخ وادی میں پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتارا، ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنایا، کچھ ساز و سامان کھانے پینے کا جو ضرورت کا تھا لائے تھے وہ حوالے کیا، اور بنا کچھ بتائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے۔ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی ہوئی آئی اور پوچھنے لگی، یہاں جہاں موت منہ کھولے ہوئے ہے، ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، کچھ بتائے بغیر واپس جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کچھ نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئیں، حضرت حاجرہ نے خود ہی سوال کیا، اللہ امرک بہذا، اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے لگام کو حضرت حاجرہ نے چھوڑ دیا، ان کو رخصت کیا، اور رخصت کرتے ہوئے کہا، اذن لن یضیعنا اللہ، آپ جائیے، یہاں موت منہ کھولے ہوئے ہے لیکن موت کی شکلوں میں زندگی دینے والے اللہ ہیں، وہی زندگی دیں گے، اسباب زندگی پیدا کریں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بڑے امتحان کے دن گزارے، ساز و سامان ختم ہو گیا، بچہ بھوک سے پریشان ہو گیا، تو صفا مروہ کے درمیان میں 7 دفعہ چکر لگایا کہ شاید کچھ تو نظر آ جائے۔ 7 دفعہ دوڑنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کی قدرت نظر آ گئی، اللہ کی نصرت نظر آ گئی، کہ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور اللہ نے وہ زندگی کا سبب بنا دیا۔ اسی طرح سے 1 سال گزر گیا، حضرت حاجرہ روزانہ اپنے شوہر کا راستہ دیکھتی تھیں، اپنے شوہر کی راہ تکتی تھیں، कि आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे। शौहर को ना आना था ना आए, एक साल गुजर गया। एक साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली तो हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए। और अजीब अल्लाह की शान कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हजरत हाजिरा और बच्चे को देखने की इजाजत तो दी, लेकिन उतर कर, सवारी से उतर कर उनके साथ कुछ वक्त गुजारने और ठहरने की इजाजत नहीं दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अपनी बीवी से मुलाकात की, बच्चे को देखा, एक साल का दो साल का बच्चा हो गया था। हजरत हाजिरा ने बड़ी मन्नत की, नीचे तशरीफ लाइए, झोपड़ा हमारा है जो आपने बनाया था, हमने उसको थोड़ा सा संवार लिया है, तशरीफ रखिए, हम आपके लिए कुछ इंतजाम करें, कुछ खाना पीना कुछ तो हो जाए, जरा वक्त हमारे साथ गुजर जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, आप सवारी पर ही सवार रहे। तो हजरत हाजिरा ने पूछा उतरने की इजाजत नहीं है? फरमाया कि नहीं है। तो हजरत हाजिरा ने फरमाया ठीक है, उतरने की इजाजत नहीं है तो इसी जमजम के पानी से हम आपके हाथ मुंह पैर धो देते हैं और इतनी सी खिदमत करके हम सआदत और खुशनसीबी पा लेते हैं। हजरत हाजिरा ने खिदमत की, पानी पिलाया, जो था खिलाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। फिर आना जाना लगा रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला कुरान का ये वाकिया बयान करते हैं कि फलम्मा बलग माहुस्साया, जब बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने के काबिल बन गया, हम उनका साथ देने के लायक हो गया, 8-9-10 साल की उम्र हजरत इस्माइल की हो गई, तब अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान आया कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि अपने बच्चे को जुबा कर रहे हैं। बच्चे को ख्वाब सुनाया और ख्वाब सुनाकर बच्चे से पूछा फंजुर मादा तरा, तेरा क्या ख्याल है बेटे? तो हजरत हाजिरा की तरबियत थी, हजरत हाजिरा की तरबियत का नतीजा था। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया या अबती फल मा तो उमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जान वो कर जाइए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है और इंशा अल्लाह आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेके गए, कुरान ये सारे किस्से नहीं बयान करता है। एक जगह पर पहुंचे, वहां बच्चे को लिटा दिया और छुरी उठाकर गर्दन पर चलाने लगे, तो वो वाकिया फिर कुरान बयान करता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों अल्लाह के फरमा बरदार हो गए और बाप ने बेटे को जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिया और पूरी ताकत से चाकू चलाने लगे, तो क्या हुआ? नादैना हो अय्या इब्राहिम, हमने आसमानों से पुकारा कि इब्राहिम बस करो, इब्राहिम बस करो, कद सद्दक्तर रुया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को ऐसे ही अजर व सवाब देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमा इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, इब्राहिम ये बहुत सख्त इम्तिहान था, बड़ी आजमाइश थी, जिस आजमाइश में तुम कामयाब निकल चुके हो, चलो वह फदैना हो बिज़िबहिन अज़ीम, तुम अपने बच्चे को ज़ुबह न करो, तुम्हारे बच्चे के फिदिये में हम आसमानों से एक मेंढा भेजते हैं, उसको ज़ुबह कर दो, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और ये तुम्हारी सुन्नत होगी जो आखिरीन में आने वालों में चलती रहेगी। ये अल्लाह ने पूरा किस्सा बयान किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा मा हाज़िहिल अज़ाहिया रसूलल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानियां होती थी, तो सहाबा ने पूछा मा हाज़िहिल अज़ाहिया रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियां क्या हैं? जानवर ज़ुबह किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, क्या है आखिर ये? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका और सुन्नत है। सहाबा इतने सवाल इतने जवाब पर मुतमईन नहीं हुए। सहाबा ने पूछा बाप का तरीका बाप की सुन्नत ठीक है, लेकिन हमें भी कुछ मिलेगा। सिर्फ बाप के उस सुन्नत को रसम के तौर पर जिंदा करना है या उसका कुछ अजरो सवाब भी हमें मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अजर और सवाब क्या मिलेगा मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, तफसील बता नहीं सकता, एक बात सिर्फ तुम्हें बताता हूं फिर तुम उससे अंदाजा लगा लेना। बिकुल्ली शारतिन हसनतुन, हर बाल के बदले एक नेकी है। जो बाल दबागत के वक्त पर उसको साफ करके नालियों में बहा दिया जाएगा उसमें से हर हर बाल के बदले एक एक सदके, तो खाल के बदले क्या, गोश्त के बदले क्या, वो सब तुम खुद अंदाजा कर सकते हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, सुनने इब्ने माजा की रिवायत है जी, जरा हमारे कुछ दोस्त हैं उन दोस्तों को चाहिए कि वो जरा इस हदीस को कान खोल कर सुने कि अल्बानी ने इस हदीस को साबित कहा है, एक और जगह पर अल्बानी ने इस हदीस को सही कहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन वजद साअतन फलम युदही फला यकुरबन मुसल्लाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके पास कुर्बानी देने की गुंजाइश मौजूद हो वो कुर्बानी ना दे तो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सख्त तंबीह के जुमले, इन जुमलों को जरा गौर से सुने और सुनकर समझने की कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मन वजद सातन, जिसके पास गुंजाइश हो। उलमा ने फरमाया गुंजाइश का मतलब निसाब जकात किसी के पास हो, और आज के जमाने के एतबार से 40-45 हजार रुपए किसी के पास हो, चाहे वो कैश के तौर पर हो, चाहे वो जी अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, चाहे वो अपने कारोबार के कैपिटल के तौर पर हो, आज के जमाने में अगर किसी के पास 40-45 हजार रुपए हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसने फलम युदही, नमाज से पहले कुर्बानी तो नहीं होती है लेकिन कुर्बानी का सारा इंतजाम हो जाता है, कुर्बानी की सारी कोशिशें हो जाती हैं, जानवर तैयार रहता है, उसको खरीद लिया जाता है, सारा इंतजाम हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलम युदही जी, जिसने साथ गुंजाइश के बावजूद और सहूलत के बावजूद कुर्बानी न दी, कुर्बानी नदी का मतलब यह है कि कुर्बानी का सारा इंतजाम न किया, फला यकरुबन मुसल्लाना, वो ईदगाह के करीब ना है, वो मुसलमानों में शामिल होने के लायक नहीं है। और आज के इस खुशी के मौके पर आज के दिन का जो अल्लाह का महबूब अमल है उस अमल को करने के लिए तैयार ना हो तो वो इस जमात में शामिल होने के लायक नहीं है, उसको नहीं आना चाहिए मुसल्ले तक, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला से पूछा गया आपके जमाने में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानियां कैसे होती थी, आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को याद करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3-3 चांद 2-2 महीने खुद रसूलुल्लाह के घर में ऐसे गुजर जाते थे कि जिसमें घर का चूल्हा नहीं जलता था। हजरत अबू हुरैरा जी ग़ज़वे खंदक के बाद उन्होंने ईमान कबूल किया है 7 हिजरी के बाद, और अबू हुरैरा का किस्सा आप बार बार सुनते हैं, फ़ज़ाइल आमाल की तालीम माशाल्लाह हर मस्जिद में होती है और मस्जिद की तालीम में लोग बैठ के ये वाकिया सुनते हैं कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे भूख की वजह से जी ऐसी कैफियत हो जाती बेहोशी की कि लोग समझते कि मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है, मेरी गर्दन पर पैर रखकर दबाते, मुझे कोई बीमारी नहीं, भूख होती थी जिसकी वजह से मैं चलने और खड़ने के काबिल नहीं होता। कभी अबू बकर जाते तो अबू बकर के पीछे 2 कदम चलता, उमर जाते तो उमर के पीछे 2 कदम चलता, शायद अबू बकर और उमर घर ले जाके 2 निवाले मुझे खिला दें मेरी भूख दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने भी तवज्जो न की। आप वापस आके मस्जिद में बैठ गया, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, एक दूध का प्याला आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला दिखाकर फरमाया सुफा वालों को बुलाओ। तो एक दूध का प्याला और सुफा वाले, सोच के मैंने समझ लिया कि अब भी कुछ मिलने वाला नहीं है। यह सन 7 हिजरी के बाद का किस्सा है कि तंगियों का दौर था। उस दौर के बारे में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला से पूछा जाता है कि आपके जमाने में कुर्बानियां कैसे होती थी। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे दौर में कुर्बानी ऐसे होती थी कि एक जानवर ले लेते थे और उसको जुबह कर लेते थे और ये समझते कि ये पूरे घर की तरफ से कुर्बानी हो गई, हम खुद भी खाते दूसरों को भी खिलाते थे। एक वो हदीस जहन में रखिए, मन वजदा सातन, गुंजाइश पर, और दूसरे ये हदीस सामने रखिए और इस हदीस को अल्फाज से नहीं पस मंजर से समझिए, बैकग्राउंड से समझिए कि रसूलुल्लाह के जमाने के बारे में पूछा जा रहा है और अल्लाह के रसूल का जमाना सन 7 हिजरी के बाद सन 8 सन 9 हिजरी में ये कैफियत है कि तंगियों का दौर चल रहा है और उस तंगियों के दौर में कुर्बानी देने की सहूलत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खुद इसका एहतमाम करते तो सहाबा भी बावजूद तंगी के कुर्बानी देते और वो एक जानवर अपनी तरफ से का मतलब अपने सारे घर की तरफ से दे देते। हमारे घर में कुर्बानी हो, बच्चे कुर्बानी नहीं देते हैं लेकिन बच्चे भी जाकर रिश्तेदारों में कहते हैं हमारे यहां कुर्बानी हुई, हमने कुर्बानी दी। बच्चे कहते हैं हमने कुर्बानी दी, बच्चे ने थोड़ी कुर्बानी दी, घर के बड़े ने कुर्बानी दी, लेकिन बच्चे भी कहते हैं हमने कुर्बानी दी। तो यही मतलब उलमा ने बयान फरमाया है कि तंगियों के दौर में रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबा तंगियों के बावजूद कुर्बानी देते थे और ये समझते थे कि ये एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से है। एक तरफ और आप ये भी समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय में 7 हिस्से बताए हैं, ऊंट में 7 हिस्से बताए हैं, गाय और ऊंट में 7 हिस्से बताए जा रहे हैं और एक बकरा सारे घर की तरफ से काफी हो रहा है। दोनों के दरमियान में कोई जोड़ ही समझ में नहीं आता है कि जब एक बकरा पूरे घर की तरफ से काफी है तो फिर गाय में 7 हिस्से क्यों होने चाहिए, ऊंट में 7 हिस्से क्यों होने चाहिए। ये दोनों का कोई आपस में कोई जोड़ ही समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे साफ अर्ज करता हूं, जिन लोगों को ये हदीस बकरईद में याद आ जाती है या ज़िलहिज्जा में याद आ जाती है, उनके पास पूरे साल के 10-12 महीने हैं, वो साल के 10-12 महीने किसी समझदार आलिम के पास पहुंचकर इस हदीस के मतलब को क्यों नहीं समझते हैं, बजाय समझने के उम्मत में उलझने और तशवीश के पैदा करने और उम्मत के जहनों को परागंदा करने के लिए सिर्फ बकरईद के मौके पर हदीसें जी वायरल कर देते हैं, व्हाट्सएप पर वायरल कर लोगों के जहनों को परागंदा और परेशान करते हैं और समझते कुछ नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, अता सुबात तकौमिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कचरा डालने की जगह पर तशरीफ लाए, फबाला काइमन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े पेशाब कर दिया। हदीस है, रसूलुल्लाह का अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचरा कोड़ा करकट डालने की जगह पे तशरीफ लाए और वहां खड़े होकर आपने पेशाब किया जी। बस मंजर हदीस के साथ में बयान किया जाता है, अता सुबात तो कौमिन, तो समझना चाहिए कि कचरा डालने की जगह पर बैठने की गुंजाइश नहीं थी, बैठ के पेशाब करते तो कपड़ों पर और बदन पर उड़ने का डर था, इस वजह से अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया। एक साहब ने कह दिया खड़े होके पेशाब करना सुन्नत है। एक साहब उन्हीं की मजलिस में एक जी बैठे हुए थे, एक समझदार, उन्होंने खड़े होके पूछा मेरा एक सवाल है, अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत जी मर्दों औरतों दोनों के लिए होती है, ये खड़े होके पेशाब करने की सुन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए भी है। हर चीज को समझना पड़ता है, बिना समझे सिर्फ वायरल कर देने से काम नहीं चलेगा। तो बुजुर्गो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा अमिल आदमीयुन मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराकिद दम। 10वीं ज़िलहिज्जा को अल्लाह के पास खून बहाने से ज्यादा कोई और अमल पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कुर्बानी का अमल है। कुर्बानी के पैसे गरीब की शादी हो रही है उसमें दे दें, मोहताज बीमार है उसमें दे दें, कोई परेशान हाल है उसको दे दें, नहीं, آج صدقہ صدقے کی کوئی اور شکل اللہ کو پسند نہیں ہے، آج اللہ کو صرف ایک عمل پسند ہے اور وہ عمل ہے خون کا بہانا، جانور کا ذبح ہونا، یہی اللہ کے رسول اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَضَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر خون کے قطرے پڑنے سے پہلے وہ اللہ کی قبولیت کے مقام پہ پڑتے ہیں، اس قبولیت کے مقام کو تلاش کرو۔ اور یاد رکھو جانور کہ وہ حصے جن کو تم ضائع سمجھتے ہو، جس اس کے سینگ، اس کا گوبر، اس کی وہ مینگنیاں اور اس کے وہ کھر جو بیکار سمجھے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں یہ بھی لا کے رکھا جائے گا، یہ بھی لا کے رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فطیبو بیہا نفسا، جی خوش دلی سے اچھے طریقے سے قربانی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو جو میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی عرض کی، حضرت ابو ایوب انصاری کی اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مباحات ریاکاری مت کرو، درمیانہ جانور پسندیدہ ہے، جانور بہت عمدہ، بہت قیمتی، بڑا، یہ اللہ جل شانہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ بلا ریاکاری کے عمدہ اور اچھا کر دے بہتر ہے، لیکن درمیانہ ہو زیادہ بہتر ہے۔ اعلیٰ اور نفیس کے نام پر ریاکاری کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ امارت شرعیہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکومت کی طرف سے یہ قانون لاگو ہے کہ یہ جانور ذبح نہ کیے جائیں، ہمیں خود بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا، مسلمانوں کو ذلیل کرنا، یہ کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے احتیاط کریں اور احتیاط کے ساتھ میں کریں۔ مشترکہ قربانیاں ہو رہی ہیں، جہاں آپ کو اعتماد ہو اعتماد کی جگہوں پر تلاش کر کے، اگر ایک جانور اپنی طرف سے نہیں دیا جا سکتا تو مشترکہ قربانیوں میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ دور بھی ہو رہی ہیں، نزدیک بھی ہو رہی ہیں، آپ کو جس میں ثواب دید اپنی، آپ کو جو سمجھ میں آئے اور جس میں آپ کا اعتماد ہو، وہاں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ قربانی ہی کا گویا یہ آنے والے عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قربانی کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو اللہ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا